आप सबका आज के रामनवमी के शुभ अवसर पर स्वागत है। तो हम शुरुआत प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति एक श्लोक अर्पण करके करेंगे। तो श्लोक अभी डिस्प्ले होगा यहाँ पे। विश्व में अनेक ग्रंथ है और उनसे अलग अलग लोगों को अलग प्रकार की प्रेरणा मिलती है, पर भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो जो इतिहास का अध्ययन करने वाले हिस्टोरियंस वो कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसने इतने ज्यादा लोगों को इतने ज्यादा समय के लिए प्रभावित किया हो जितना रामायण ने किया है। करोड़ों करोड़ों लोगों को लाखों लाखों सालों से इस ग्रंथ से प्रेरणा मिल रही है और वो अपने जीवन में एक आदर्श प्रस्थापित करके अपना जीवन चला रहे हैं। तो रामनवमी आज हम जो मनाने जा रहे हैं ये हम सब जानते हैं बहुत प्राचीन उत्सव है। तो प्रभु श्री रामचंद्र ये अनेक अनेक सालों पहले, अनेक युगों पहले इस भौतिक जगत में अवतरित हुए थे और उनके अवतरण का कारण क्या है बताया जाता है कि भगवान केवल करुणा के कारण यहाँ पे आते हैं। भागवत में बताया गया है कि भगवान के अनंत अवतार हैं और अनंत अवतार क्यों हैं? इतने अवतार हैं जितने सागर में लहरें हैं। क्यों इतने अवतार हैं? अनंत अवतार क्योंकि उनकी कृपा अनंत है, क्योंकि उनकी कृपा अनंत है, उनका प्रेम अनंत है हमारे लिए, इसलिए वे बार बार इस भौतिक जगत में जो जीवात्मा उन्हें भूल गए हैं उनको पुनः स्मृति दिलाने के लिए यहाँ पे वापस आते हैं। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनसु यह प्राणिनाम प्रतिफलम। उसे बताया गया है कि जो इस भौतिक जगत में भूल गए हैं उनको भगवान ऐसे आकर्षक लीलाएं करते हैं जिससे कि उन्हें जीवात्मा याद कर सके। इज इट बीइंग डिस्प्ले? टेल मी व्हेन। तो भगवान आते हैं इस भौतिक जगत में हमें सबको पुनः उनकी ओर आकर्षित करने के लिए। जीव गोस्वामी पाद उनके एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लघु भागवतामृत में बताते हैं कि भगवान के अनंत अवतार हैं और ये सब अवतार वैकुंठ से यहाँ पे आते हैं। तो इंग्लिश में अवतार को कभी कभी ट्रांसलेट करते हैं इनकार्नेशन। वास्तव में इनकार्नेशन ये उचित शब्द नहीं है अवतार के लिए, क्योंकि इनकार्नेशन इसमें शब्द आता है कारना, कारना यानी कार्निवोरस जैसे होता है। तो इनकार्नेशन यानी जो मांस में आए हैं वैसे। तो वास्तव में भगवान एक हमारे जैसे भौतिक शरीर में नहीं आते हैं, वो दिव्य शरीर में आते हैं। तो ऐसे बताया गया है कि ये भौतिक जगत है ये एक भ्रम जैसे है। आत्मा आध्यात्मिक जगत से जब यहाँ पे आता है तो मान लीजिए वो एक कल्पना के जगत में जी रहा है। कल्पना मतलब जो इस जगत में हो रहा है वो सत्य है पर वो क्षणिक है, इसीलिए उसको इल्यूजरी कहा गया है, क्षण भंगुर है ये। और हमारी चेतना इस भौतिक जगत में फंस गई है। हम आत्मा है पर जैसे हम सो जाते हैं तो हम वास्तव में बिस्तर पर सुरक्षित है, पर हमारी चेतना कहीं चली जाती है और उसके कारण हम भय अनुभव करते हैं, आनंद अनुभव करते हैं, अलग अलग भावनाएं अनुभव करते हैं। तो वैसे हम आत्मा है पर हमारी चेतना इस भौतिक जगत में अभी फंस गई है। जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर देख रहा है, तो जब वो पिक्चर देख रहा है तब उसके बाजू में भी कोई बैठा है, तो पिक्चर में ध्यान दे देता है वो, तो उसके बाजू में कौन बैठा है उसको पता नहीं है। और इसके कारण वह वैसी हमारी परिस्थिति है, हमारे बाजू में हृदय में हृदय सर्वस्व अवस्थितम, हमारे बाजू में हृदय में भगवान बैठे हैं परमात्मा के रूप में। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशयशोचिति मुह्यमानः चुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानामिति वितशोकः। मुंडक उपनिषद बताता है कि मान ली दो पंछी एक पेड़ पे बैठे हुए, तो एक पंछी फल खा रहा है दूसरा पंछी देख रहा है। तो वैसे हम दोनों जीवात्मा और परमात्मा शरीर में ही बैठे हैं, पर जीवात्मा इस भौतिक जगत में अलग अलग फल खा रहा है, अलग अलग विषयों का उपभोगने का प्रयास कर रहा है और वो भगवान को भूल गया है। तो वी हैव बिकम ब्लाइंड एंड डेफ टू गॉड प्रेजेंस इन आवर हार्ट। भगवान हमारे हृदय में है, वो हमसे बोल रहे हैं पर हम सुन नहीं पाते हैं, वो हमारे बाजू में है पर हम देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भौतिक जगत जो एक टीवी के समान है, एक पिक्चर के समान है, उसमें हम फंस गए हैं। और जो लोग ऐसे इस भौतिक जगत के भ्रम में बहुत ज्यादा फंस गए हैं, वो निकलना भी नहीं चाहते। जैसे कि कोई मूवी देख रहा है, पिक्चर देख रहा है, तो पिक्चर देखने के पहले लोग क्या करते हैं? लाइट बंद कर देते हैं। तो वैसे ही भोग करने के पहले लोग पहले अज्ञान में चले जाते हैं, और अगर कोई लाइट ऑन कर देता है तो लोग चिल्लाते हैं, क्यों लाइट ऑन किया, बंद करो। तो वैसे ही भौतिकवादी लोगों को हम भगवान का ज्ञान देने लगते हैं तो वो चिल्ला रहे, तो क्यों बता रहे, चुप बैठो आप, हमको हमारा भौतिक जीवन में आप डिस्टर्ब मत करो, आप हम कुछ व्यत्यय मत लाओ। पर वास्तव में भगवान भी बहुत बुद्धिमान है। भले ही हम उसकी ओर उनकी ओर नहीं मुड़ते हैं, हम उनकी ओर नहीं देखते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान उस पिक्चर के अंदर आ जाते हैं। तो हम जो पिक्चर देख रहे हैं इस भौतिक जगत में, उसमें भगवान आ जाते हैं, ताकि पिक्चर में आप ये देख लो और मेरी ओर आकर्षित हो जाओ। तो यह भगवान की परम करुणा है। कुछ परंपराओं, कुछ वैदिक संस्कृति के बाहर के कुछ परंपराओं में, कुछ संस्कृति में से लोग कहते हैं कि भगवान भौतिक जगत में अवतार कभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, हम भौतिक है, ये जगत भौतिक है। सत्य है, पर भगवान केवल आध्यात्मिक ही नहीं है, वो आध्यात्मिक है पर साथ साथ भौतिक जगत के अधिष्ठाता है। उन्होंने उनके आदेश के अनुसार ही माया देवी ने ये मूवी, ये पिक्चर बनाया है, और वो उसमें प्रवेश जरूर कर सकते हैं, और वो करते हैं उनके करुणा के कारण, हम सबका कल्याण, हम सबका उद्धार करने के लिए। तो भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो अलग अलग मनोहर लीलाएं करते हैं, जिससे कि हम इस भौतिक जगत में जो भी आकर्षित चीजें देख रहे हैं उससे हमारा ध्यान भगवान की ओर चले जाए। अभी अगर हम तुलना करते हैं एक साधारण हिंदी मूवी का और रामायण का, तो कहानी लगभग सेम है। एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक विलन है, और वो विलन हीरोइन तो उसको बुरी नजर होती है, वो हीरो को, हीरोइन को उठा लेके जाता है, फिर हीरो और हीरो विलन में युद्ध होता है, और फिर हीरो हीरोइन का पुनः मिलन हो जाता है। तो कहानी बिल्कुल एक ही है, पर फर्क क्या है, जो आधुनिक मूवी है उसमें हीरो, हीरोइन और विलन सब विलन है। मतलब क्या कि वास्तव में हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो अभी रावण को लोग विलन या खलनायक क्यों मानते हैं, क्योंकि वो बहुत काम वासना से भरा हुआ था। पर अगर हम हिंदी मूवी में देखते हैं, क्या हीरो में काम वासना नहीं है, क्या हीरोइन में काम वासना नहीं है, सब में काम वासना है। इसीलिए ये मूवी में है कि द हीरो, द हीरोइन एंड द विलन आर ऑल विलन्स बट इन डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लैक। उनका शेड जो है, उनका जो खलनायक का भाव है, वो अलग अलग दर्जे में है। पर वास्तव में भगवान जो है, तो जो सारे जो मूवीज है हिंदी मूवीज, वो वास्तव में रामायण की विकृत प्रतिबिंब है। ऐसे भगवद गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान बताते हैं, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि अस्तम वेद स वेदवित्। तो कहते हैं कि एक ऐसा विशाल बरगद का पेड़ है जो उल्टा है, जिसके जड़, जिसके मूल ऊपर है, और जिसके जो ब्रांचेस है, जो शाखाएं है, नीचे है। तो ऐसा ऐसा वृक्ष कहाँ दिखता है हमें, एक नदी में अगर एक तट पर झाड़ है तो उसको प्रतिबिंबित रूप में दिखता है। तो जो भगवान की लीला है उनके पार्षदों के साथ, वो असली बरगद का पेड़ है, और जो मूवीज में दिखाते हैं वो एक परिवर्तन, वो एक विकृत प्रतिबिंब है। तो लोग आज का जो मूवीज होते हैं उसके बहुत आकर्षित हो जाते हैं, पर वो क्या है, अगर वो प्रतिबिंब में कोई आम का फल दिख रहा है तो आम का फल उसके पीछे जा रहे हैं, वो कूद रहे हैं, पर क्या मिलता है, कितना भी कूदे वो आम का फल कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आम का फल वहां पे है ही नहीं, सिर्फ प्रतिबिंब है। तो वैसे ही लोग मूवीज देखते हैं तो उस मूवी में क्या है, वास्तव में सब कुछ सेकेंड हैंड एंजॉयमेंट है। सेकेंड हैंड एंजॉयमेंट यानी क्या, दूसरा कोई भोग कर रहा है और हम देखते हैं और कल्पना करते हैं वहां पे होता है कितना अच्छा होता। तो इसीलिए जब लोग मूवी देखते हैं तो क्या करते हैं, कुछ तो भी खाते हैं, क्योंकि सब कुछ काल्पनिक है, कुछ तो सच्चा चाहिए, इसलिए कुछ खाते रहते।
इसीलिए कुछ खाते रहते,
लोग कोच पे बैठते हैं और पोटैटो चिप्स खाते हैं और फिर पोटैटो जैसे बन जाते हैं। पर हम जिनको अगर हमको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है तो हमें वो प्रतिबिंब के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, हम वास्तव में असली फल की प्राप्ति कर सकते हैं। और असली फल की प्राप्ति हमको दिलाने के लिए ही भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। इज इट बीइंग डिस्प्लेड नाउ? तो फर्स्ट लाइन, तो ये तो अभी प्रभु श्री राम के प्रति हम एक श्लोक उनको अर्पण करेंगे और फिर रामचंद्र भगवान के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये पार्श्वभूमि थी, भगवान यहाँ पे आते हैं प्रतिबिंब से असलियत की ओर आकर्षित करने के लिए। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। तो इस श्लोक में जो भगवान का दर्शन है राम का उसके वर्णन हो रहा है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, उनके एक बाजू में लक्ष्मण खड़े हैं, वामेश जनक आत्मजा, जो जनक महाराज की कन्या है सीता देवी उनके दूसरे बाजू में खड़ी है, और पूरा तो उनके सामने मारुति यस्य के सामने मारुति है। तो ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र को रघुनंदन भगवान को तम वंदे रघुनंदनम। तो हम दो बार साइड करेंगे श्लोक को। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। जीव गोस्वामी उनके एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है लघु भागवतामृत, उसमें बताते हैं कि भगवान के अनंत अवतार है, और जैसे भागवत में बताया गया है एते चमशः कलकंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सब अवतारों के स्रोत है भगवान श्री कृष्ण, और जो वैकुंठ धाम है उसमें अनंत ग्रह है और उसमें सबसे ऊपर का जो ग्रह है गोलोक वृंदावन है, कृष्ण लोक है। पर वो बताते हैं कि सब जो विष्णु के अवतार है उनमें से दो अवतार परावस्था अवतार है। परावस्था अवतार यानी उनका स्तर बाकी सब अवतारों से ऊपर है, और वो है प्रभु श्री रामचंद्र और नरसिंह देव। इसका कारण क्या है कि सब अगर विष्णु के अलग अलग अवतार हम देखते हैं तो उसमें अधिकांश रूप से ऐश्वर्य भाव होता है, तो विष्णु स्वामी है और सब भक्त उनके दास है और आदर से उनको सेवा कर रहे हैं। और अगर हम कृष्ण लीला में देखते हैं तो कृष्ण लीला में वास्तव में भगवान अपने ऐश्वर्य को छिपा देते हैं ताकि वे प्रेम का आदान प्रदान अपने भक्तों के साथ कर सके। तो भगवान की जो लीला है वो वास्तव में एक ड्रामा के समान है, एक नाटक के समान है, पर ये जो नाटक है वो शाश्वत, इटर्नल ड्रामा। ये ड्रामा का मतलब ये असत्य नहीं है, ड्रामा का मतलब ये है कि सब भक्त और भगवान भूमिकाएं निभाते हैं जिससे कि प्रेम का आदान प्रदान हो सके। जैसे कि कोई अमीर व्यक्ति यदि होता है वो अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ अगर कोई उत्सव होगा साथ में आ जाए तो वो ड्रामा करते हैं, तो वो अमीर व्यक्ति कभी कभी खुद को भिखारी बना देता है नाटक में, और वो जो भीख मांग रहा है तो वो उस भीख मांगने की भूमिका करते करते उसको आनंद होता है, उसके सब रिश्तेदारों को आनंद होता है, तो जो क्योंकि नाटक चल रहा है। अच्छा, तो भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है, पर खास करके वृंदावन में जब वे लीला करते हैं कृष्ण के रूप में तो केवल प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। वो जैसे है कि सब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सब उसको उनको आदर कर रहे हैं और सब उनको मान सम्मान दे रहे हैं, तो वो मान सम्मान के कारण प्रेम का आदान प्रदान ज्यादा नहीं होता है, पर वही प्राइम मिनिस्टर जब घर में आते हैं तो उनकी माँ मन्नू तो आज लेट आ गया वापस, वापस उनको बड़े प्रेम से बोलती, उनका उनका जो ऐश्वर्य का कोई उसका ध्यान नहीं देते है और उससे उनको आनंद मिलता है। तो जो विष्णु इज गॉड इन ऑफिस एंड कृष्णा इज गॉड एट होम। विष्णु जो है वह भगवान ऑफिस में जैसे है गंभीर रूप में है और कृष्ण जो है वह घर में है। तो भगवान कृष्ण की लीला में इतनी मधुरता है कि ऐश्वर्य बहुत कम दिखाई देता है। वो भगवान है और विश्वरूप उन्हें दिखाया है अर्जुन को, यशोदा माई को अपने मुंह में, पर जब वो लीला करते हैं तो वो ऐश्वर्य को छिपा देते हैं। तो ये भगवान कृष्ण अपने ऐश्वर्य को पूरा छिपा देते हैं और केवल प्रेम का आदान प्रदान है, शुद्ध प्रेम का। और विष्णु जब लीला करते हैं तो उसमें प्रेम है पर वो ऐश्वर्य से भरा प्रेम है। और इनके बीच में है नरसिंह और राम, इनमें भी ऐश्वर्य का भाव है पर साथ साथ और घनिष्ठता है और प्रेम का आदान प्रदान है। इसीलिए जहां पे प्रेम का आदान प्रदान और है उन सब अवतारों को जीव गोस्वामी पाद परावस्था अवतार बताते हैं। तो अभी हम ये चित्र है रामलीला के, अलग अलग चित्र हम देखेंगे संक्षिप्त रूप से, उसके ऊपर से रामलीला से जाएंगे और बीच में हम कुछ लीलाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आप जानते हैं वाल्मीकि ने रामायण कृत किया है, इसकी गोइंग है, कीप गोइंग है रैपिडली। तो जब रावण और सब, प्लीज एंड आई टेल यू गो अहेड टू, ओके व्हेन आई टेल यू यू गो अहेड। उनके तीन पत्नियों से फिर बाद में जैसे राम और लक्ष्मण बड़े होने लगे तो विश्वामित्र उनके घर में आए और मुझे बोले कि मुझे राक्षस असुरों का वध करने के लिए उनकी मदद चाहिए। तो बड़े सिर पर सीने पर उन्होंने दशरथ महाराज ने पत्थर रख के उनको भेज दिया। तो ये जो लीला है प्रभु श्री राम ने सिर्फ अपने चरण स्पर्श से अहिल्या को पत्थर से वापस सुंदर रूप प्रदान कर दिया। और फिर प्रभु श्री राम जनक महाराज के दरबार में धनुष्य उन्होंने उठाया और धनुष्य तोड़ दिया और उससे सीता का उन्होंने हाथ प्राप्त किया। फिर चारों भाइयों की सीता के और तीन बहनों से उनसे विवाह हुआ। तो जब प्रभु श्री राम बाद में राज्याभिषेक उनका होने वाला था तब हम जानते हैं कि कैकेयी ने बड़ा षड्यंत्र किया मंथरा के प्रभाव के कारण और वनवास में भेज दिया उनको। तो हम तीन प्रमुख शिक्षाएं रामलीला से आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये तीन लीला तीन शिक्षाएं है, लिखा है आर ए एम राम। तो पहले जो है जिम्मेदारी। तो जब प्रभु श्री राम को बताया, वास्तव में जब प्रभु श्री राम गए दशरथ महाराज के कमरे में, कैकेयी के कमरे में जहां पर दशरथ महाराज बेहोश पड़े हुए थे, तो सुमंत्र ने उनको बुलाया था और जब उन्होंने देखा कि दशरथ महाराज जमीन पे पड़े हुए हैं और बड़े क्रूर दृष्टि से कैकेयी वहां पे देख रही है, तो उन्होंने कहा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है पिताजी, क्या हुआ? तो दशरथ महाराज कुछ न बोल पाए और कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे वचन दिया था और अभी वो वचन के पूर्ति के लिए वो तैयार नहीं है, इसलिए मैं बताऊंगी कि उन्होंने वचन, उनकी इच्छा है कि तुम जंगल में चले जाओ और भरत राजा बन जाए। तो प्रभु श्री राम बिल्कुल विचलित नहीं हुए और उन्होंने कैकेयी से कहा कि हे कैकेयी, मैं आज तक तुम्हें मेरी माँ के समान मानता था और मैं सोचता था कि तुम भी मुझे मेरे अपने पुत्र के समान मानती थी, पर आज मुझे पता चला कि ये सत्य नहीं है, कि तुमने मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। अगर तुमने मुझे मेरे पुत्र के मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया होता तो तुम सीधा मुझे आदेश दे देते कि तुम जंगल में चले जाओ और भरत राजा बन जाएगा। तो मुझे जंगल में जाने का दुख नहीं हो रहा है, पर तुम्हें मुझ में इतना विश्वास नहीं था कि मैं सीधा जंगल में चला जाऊंगा या आदेश देने का पालन करूंगा कि नहीं, इसलिए तुम्हें मेरे पिता को बोलना पड़ा, मैं तुरंत चला जाऊंगा और भरत राजा बन सकता है। और जब ऐसा बोलकर निकल गए तो ये सुनकर दशरथ महाराज रोने लग गए, पर कैकेयी का हृदय निष्ठुर बन गया था। और जब ये जानकारी लक्ष्मण को पता चली तो लक्ष्मण बड़ा क्रुद्ध हो गया और बोला, जो भी तुम्हें अयोध्या से बाहर जाने को बोलेगा मैं उसका वध कर दूंगा। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हमें हमारे पिता के आदेश का पालन करना चाहिए। उन्होंने बताया है कि हमें मुझे जंगल में जाना चाहिए, तो मुझे जाना ही चाहिए। तो उन्होंने राम लक्ष्मण को मना लिया, बड़ा क्रुद्ध था पर मान गया बड़े भाई का आदेश। फिर सीता के पास गए वो, और सीता के पास गए तो सीता ने पूछा, ये तो बड़ा प्रसन्नता का दिन है पर आप प्रसन्न नहीं हो, क्या बात है? फिर सब कुछ बताया उन्होंने। और फिर रामचंद्र भगवान ने सीता से कहा कि आप यहीं पर रहो, 14 साल ऐसे ही चले जाएंगे और तुम यहाँ पर रहकर भरत और मेरे पिता मेरे माता उन सब की तरह सेवा करो। सीता माता ने सुना तो वो कहने लगी कि कैसे आप ये वचन बोल रहे हो? एक पतिव्रता स्त्री जब तक उसके पति जीवित है किसी और पुरुष के आश्रय में नहीं रह सकती है। अगर आप जंगल में जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जंगल में जाऊंगी। अगर आपको लग रहा है कि जंगल का जो जीवन है बड़ा निष्ठुर है, मैं वहां पर जी नहीं पाऊंगी, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे आगे जाऊंगी और जो भी कांटे तुम्हारे पैर में चुभने हैं वो मेरे पैर में लूंगी। तो प्रभु श्री राम ने उनको बताया, वास्तव में तुम्हें पता नहीं है जंगल का जीवन क्या होता है। जंगल में बड़े खतरनाक जानवर होते हैं, सिंह हाथी, और वे कभी भी आक्रमण करके खा सकते हैं। इतना ही नहीं, जंगल में कभी कभी दिन भर खाने को नहीं मिलता है, दिन भर चलना पड़ता है, पीने को नहीं मिलता है। और तुम तो बचपन से ऐश्वर्य में रह रही हो, अगर मैं तुम्हें जंगल में ले जाऊंगा तो जंगल में ले जाकर ही मैं तुम्हारे संरक्षण करने के मेरे कर्तव्य में असक्षम हो जाऊंगा, तो इसलिए तुम यहीं पर रहो। तो सीता ने कहा कि एक पत्नी का धर्म है कि पति के साथ सुख दुख दोनों में साथ में रहे। तो अगर तुम्हें चिंता हो रही है कि मैं जंगल में कैसे जीऊंगी, तो अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम दोनों साथ में शरीर त्यागेंगे, पर मैं अकेली यहां पे कभी नहीं रहूंगी। तो गदुर संकल्प देख के ऋषि राम बोले कि हे सीते, अगर तुम्हें दुख दे, अगर तुम्हें किसी चीज से दुख मिल रहा है तो आओ, मैं स्वर्ग में भी जाने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं पहले सोच रहा था कि तुम्हें जंगल में जाके लेकर जाके दुख होगा ज्यादा, पर तुम्हारे वचनों से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यहां पे रहकर ज्यादा दुख होगा, तो इसीलिए तुम मेरे साथ चल सकती हो और मैं धर्म के अनुसार तुम्हें पूरी सुरक्षा करूंगा। जब ऐसे बता रहे थे तो वहां पे कौशल्या आ गई, और कौशल्या आई तो बोली, हे राम, अगर तुम जंगल में जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। और तो प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं, तुम नहीं आ सकती, तुम्हें तो मेरे पिता के साथ रहकर उनकी सेवा करनी है, एक पत्नी का धर्म है कि अपने पति के साथ रहे। कौशल्या बोली, नहीं, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, वे जो दशरथ है वो कैकेयी के दुष्विचार से दूषित हो गए हैं और वो मेरे लिए जीवन यहाँ पे बड़ा दुख से भर देंगे, तो मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। तो प्रभु श्री राम ने बोला, हे माँ, कम से कम आप तो अपने पति को गलत महज समझो, क्या तुम भी मेरे पिता को गलत समझ बैठे हो? मुझे जंगल में भेजकर मेरे पिता को बहुत दुख हो रहा है, वो विवश होकर भेज रहे हैं, अगर तुम सोचोगी कि वो जानबूझकर मुझे भेज रहे तो ये आप में जो गलतफहमी है देखकर उनको और दुख होगा, तो तुम्हारे हृदय में जो भी भावना है वो बिल्कुल आप दिखाओ मत। और इस समय जब वो इतने दुखी है कई के षड्यंत्र के कारण, तो तुम्हें ही उनको आधार देना होगा, अगर तुम आधार नहीं देगे तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो कौशल्या रोते हुए मान गई। और फिर लक्ष्मण ने कहा, हे लक्ष्मण, प्रभु अगर तुम आ गए, तुम जाओगे जंगल में तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। प्रभु श्री राम ने कहा तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। जो कैकेयी का वचन था वो सिर्फ मेरे लिए था। लक्ष्मण ने कहा कि हे भाई वरिष्ठ भ्राता, आपके बिना मैं जी नहीं सकता। अगर आप जंगल में जाओगे तो दिन रात मैं आपका संरक्षण करूंगा और आप दोनों के आगे जाकर मैं रास्ता साफ करूंगा। आप जहां भी रहेंगे, रात भर हो दिन हो, आपका आपके बाजू में रहूंगा, आपका जो भी आदेश होगा पालन करने के लिए। कृपया आप मुझे मेरे साथ लेके चलो। और फिर वे चले गए। और जब जा रहे थे, दशरथ महाराज ने कहा अगर लक्ष्मण और सीता साथ में जा रहे तो मैं भी जाऊंगा और सारा राजा भी राज्य भी जाएगा। तो कैकेयी को इस सुनसान अयोध्या पे राज्य करने दो। तो कैकेयी बड़ी क्रोधित हो गई और बोली कि तुमने वचन दिया था कि भरत राज्य का राजा बनेगा, एक रेगिस्तान का राजा नहीं, सब राज्य का ऐश्वर्य यहीं पर रहेगा। तो झाए लग गए, सब दशरथ महाराज के पीछे दौड़ रहे थे और फिर वो फिसल गए और गिर गए। जो रथ चला गया तो जब तक रथ दृष्टि से ओझल नहीं हो गया तब तक वे देख रहे थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक ऐसे है, वैदिक संस्कृति में कर्तव्य को बहुत महत्व दिया जाता था कि हर एक व्यक्ति को जो अपना कर्तव्य का पालन करते हैं तो उससे उनकी प्रगति होती है, उससे उनकी उन्नति होती है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि जैसे दशरथ महाराज के आदेशों का प्रभु श्री राम ने पालन किया था, वैसे ही सब पुत्रों को अपने पिता का आदेश का पालन करना चाहिए। जरूर सत्य है, पर हमको अर्ध कुकुट न्याय, आधा सत्य नहीं पालन करना चाहिए। हमको यह भी देखना चाहिए कि दशरथ महाराज ने विश्वामित्र मुनि के आदेश का पालन किया था जब उन्होंने कहा था कि मुझे आपके दो पुत्र दे दो। तो वास्तव धर्म का अर्थ है कि सब लोग भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पे हमने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी, उसके तीन स्तर है। एक है कि भौतिक अजिम्मेदारी, मतलब कोई बेटा है, लड़का है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, अपना समय ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहा है, उसके माता पिता उसके पढ़ाई के लिए फीस भर रहे हैं पर वो गैर जिम्मेदार है। या कोई व्यक्ति गृहस्थ है, अपने परिवार का देखभाल नहीं कर रहा है, सिर्फ ऐशो आराम में आलस में जीवन गंवा रहा है और सब घर में भूखे है, तो वो गैर जिम्मेदारी है और इसका शास्त्र बहुत खंडन करते हैं। और इसलिए शास्त्र बताते हैं कि इससे ऊपर उठकर सबको जिम्मेदार बनना चाहिए। हमारे जो रिश्तेदार है, हम पर जो निर्भर है, जो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, उनके लिए भी हमें आदान प्रदान में कुछ देना चाहिए, उनके लिए भी हमारे कर्तव्य होते हैं। और अधिकांश लोग समझते हैं कि अगर हम ये कर रहे हैं, अगर मैं मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मैं मेरे पति पत्नी बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, उनकी देखभाल कर रहा हूँ, तो यही धर्म है, मुझे भगवान के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर वास्तव में अगर ये देखना है कि परिवार वालों का देखभाल करना, यह तो जानवर भी करते हैं। अगर एक पंछी होता है, जब पंछी एक बीवर बर्ड नाम का एक पंछी होता है, जब वो उनके जी वो, जब वो जो उनकी पत्नी पत्नी होती है, जो मादा पंछी होते हैं, जब वो गर्भवती जाती है तो फिर वो एक झाड़ में बैठ के घोंसले में रहती है और फिर जो नर पक्षी है वो सब अन्न लेके आता है और फिर जब उसके छोटे छोटे बछड़े हो जाते हैं तो वो सबके लिए अन्न लेके आता है। पर जब बछड़े बने बड़े होने लगते हैं तो क्या होता है, तो फिर वो माँ भी बाहर निकलती है और दोनों मिलके अपने बछड़ों के लिए अन्न लाते हैं। और वो क्या, जो जब रह रहे हैं उस घोंसले के अंदर, तो वो घोंसले को बंद कर देते हैं ताकि कोई सांप वगैरह ना आए, छोटा सा उसमें छेद रहता है जिससे कि वो अन्न डालते हैं नीचे। तो ये फैमिली प्लानिंग है कि कभी सिर्फ पति नौकरी कर रहा है, पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं ताकि बच्चों की जिम्मेदारी हो सके। और फिर जो छोटे बच्चे भी होते हैं, ये छोटे बीवर के बच्चे, कुछ कुछ अंडे पहले निकलते हैं, कुछ अंडे बाद में निकलते हैं, तो जो बड़े पंछी होते हैं, छोटे मतलब बच्चों में छोटे पंछी है, वो पहले अन्न लेते हैं। पर इतना आश्चर्य की बात है, वो जब अन्न लेते हैं तो कुछ खाते नहीं है, वो जो छोटे पंछी है उनको अन्न देते हैं और सब छोटे पंछियों को अन्न देने के बाद वो खुद अन्न खाते हैं। तो ये जो भौतिक रूप से शरीर की देखभाल करना, यह तो जानवर भी करते हैं, और अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये जानवर से भी बदतर है। पर ये करना कोई धर्म का लक्षण नहीं है। वो पंछी को कोई बड़ा धर्मवादी नहीं माना जाता है अगर वो ऐसे करता है। धर्म का की शुरुआत कब होता है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब हम हमारे रिश्तेदार वाले हमारे खुद के और हमारे रिश्तेदारों के आत्मा के कल्याण के बारे में सोचते हैं तब वो धर्म की शुरुआत है। तो इसीलिए आत्मा का कल्याण क्योंकि भगवान की भक्ति के द्वारा ही होता है, तो असली जिम्मेदारी क्या है कि हमें खुद भगवान की भक्ति करनी है और हमारे परिवार वालों को भी भगवान की भक्ति में लगाना है। तो हमारे हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होते हैं और वर्टिकल रिलेशनशिप होते हैं। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है इस भौतिक जगत में सगे संबंधित रिश्ते हैं, और वर्टिकल रिलेशनशिप भगवान से रिश्ता है। तो आदर्श परिस्थिति क्या है कि हमारे जो इस जगत में रिश्ते हैं उन सबके द्वारा भगवान से हमारा रिश्ता और सुदृढ़ हो जाए। मातृ देवो भव पितृ देवो भव कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि अगर माता पिता भक्त है और वो अपने बेटे को भी भक्ति में लगा रहे हैं तो फिर ऐसे माता पिता वो मातृ देवो भव पितृ देवो के बारे में कहला जा सकता है, क्योंकि वे भगवान के प्रतिनिधि है और अपने बेटे को भगवान के पास ले जा रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि दशरथ महाराज जानते थे कि हम सब भगवान के सेवक हैं, और जब भगवान के प्रतिनिधि विश्वामित्र वहां पे आए थे तो उन्होंने खुद की संतान दे दी उनको। तो ये रामायण का अंतिम अंतिम लेसन, अंतिम शिक्षा ये नहीं है कि हमें हमें पिता के आदेश का पालन करना है। हाँ वो करना है, पर सबसे बड़ा उसका उपदेश क्या है कि हमें भगवान की शरण जाना है, हमारे भगवान के प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन करना है। तो भौतिक जिम्मेदारी जो है वो दूसरा स्तर है, पर उससे ऊपर का स्तर है आध्यात्मिक जिम्मेदारी। तो आध्यात्मिक जिम्मेदारी मतलब हम हमारे खुद के और हमारे रिश्तेदारों के शरीर और आत्मा दोनों का कल्याण करते हैं, तो वो आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। तो फिर आगे भरत जाते हैं और भगवान वो बड़ा प्रयास करते हैं प्रभु श्री राम को वापस लाने को, पर जब लेके नहीं आते हैं तो वो पादुका लाकर उनका राज्याभिषेक करते हैं, उनको राज सिंहासन पर रखते हैं। आजकल की दुनिया में दो भाइयों में झगड़ा होगा तो एक भाई अपने पादुका से दूसरे भाई को मारेगा। ऐसे स्वार्थ की दुनिया आ गई है। हम जानते हैं कि भारत के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और जब जैसे ही वो गुजर गए तो उनके दो पुत्र थे वो कुत्ते बैलनी जैसे ही युद्ध करने लग गए, और फिर जो उनकी जायदाद थी वो टुकड़े टुकड़े हो गए। ये गुहा है जो सागर के पार उनको लेके जाता है, और फिर जंगल में सीता राम लक्ष्मण साथ में रह रहे हैं। तो क्योंकि सीता राम वो दिव्य स्तर में थे तो जंगल में भी हो तो जंगल में निसर के साथ में सुखी थे। तो ऐश्वर्य भले ही ना हो उनको, वैसे प्रभु श्री रामचरण में कैसा प्रार्थना आती है कि उनका शरीर उनका जो चेहरा है वो स्मित वक्त है, वो उस पर हंसी रहती है, और भले ही राज सिंहासन का ऐश्वर्य हो, राजा का ऐश्वर्य हो या जंगल की तपस्या हो, वो स्मित उनसे चेहरे से कभी नहीं जाती है। और फिर ये मारी जाता है, और मारी अपने जादू टोने से वो रावण को मदद करता है सीता को खींच का अपहरण करने के लिए। तो रावण अपहरण करके ले जाता है, और उसके बाद जटायु अपनी जिंदगी कुर्बान करता है भगवान की सेवा के लिए। तो जटायु का बड़ा भाग्य है कि भगवान स्वयं उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं भगवान ने जटायु की रक्षा क्यों नहीं की, तो रक्षा की उन्होंने। इतने सारे पंछी दुनिया में जीते हैं और मरते हैं, तो असली रक्षा क्या है? शरीर की तो मृत्यु होने ही वाली है, पर अगर शरीर भगवान की सेवा के लिए कुर्बान करते हैं हम तो फिर उससे आत्मा का उद्धार हो जाता है। तो जटायु लॉस्ट द वॉर अगेंस्ट लॉस्ट द बैटल अगेंस्ट रावणा बट ही वन द वॉर अगेंस्ट माया। भले रावण के साथ युद्ध में हार गए पर माया के साथ जो युद्ध था उसमें जीत गए, क्योंकि वह भगवान की स्मृति करते हुए भगवान के साथ अंत संस्कार होते हुए भगवत धाम लौट गए। फिर उसके बाद में राम बड़े विरह में थे और उन्होंने शबरी का उद्धार किया, और फिर हनुमान से मुलाकात हुई उनकी, और फिर हनुमान जब खोज जा रहे थे तो उन्होंने अपनी अपने कुछ आभरण दिए ताकि सीता को ढूंढ सके, और फिर जब वो सागर के तट पे पहुंचे तो हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाई जाम्बवन ने, और फिर हनुमान कैसे बचपन में वो सूरज को पकड़ने के लिए कूद पड़े थे, वो सब कहानियां बताई। हनुमान ने अपना सारा शरीर विस्तारित कर दिया। और जब हनुमान आसमान में कूद गए तो अलग अलग समस्याएं आई, जैसे ये सिम्मी का राक्षसी है, पर सब समस्याओं के पार वे चले गए। और ये लंकिनी जो लंका के सुरक्षा कर रही थी, जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो हनुमान ने उनको एक थप्पड़ मार के नीचे गिरा दिया और वो अंदर चले गए। और सीता वाला मायूस होकर बैठी थी, तो हनुमान ने प्रभु श्री राम के बारे में गीत बताए और फिर उन्हें अपना असली रूप दिखाया। और फिर सीता से कुछ आवरण लेके वो वापस चल पड़े। और जाने के पहले सिर्फ उन्होंने ही गेव टेस्ट ऑफ व्हाट वाज टू कम टू रावण, रावण को एक झलक दे दी कि आगे क्या आने वाला है। उसके सारे अशोक पार्टी का नाश कर दिया, लंका को आग लगा दी और फिर निकल गए वापस। तो वापस जब सागर पे उड़ रहे थे तो उनको बिल्कुल भय नहीं था। वो सोच रहे थे कि प्रभु श्री राम का नाम लेकर भक्त सारे भव सागर के पार चले जाते हैं, तो ये छोटा सा सागर क्या है, बिल्कुल भय नहीं था उनको। और प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न हो गए जब राम जब हनुमान ने वापस सब समाचार लेके आए। और फिर वो सागर के तट पे आए और उन्होंने सेतु बनाया, सागर ने खुद उनके लिए योजना बनाई सेतु बनाने के लिए। और फिर जब सेतु बनाने का काम चल रहा था तब क्या हुआ, रावण पहले से बहुत ही उद्दंड था और उसने फैसला कर लिया था कि मैं इस सीता को कभी वापस नहीं करूंगा। तो एक के बाद सब उसके योद्धा का वध हो रहा था, महोदर, दुर्मुख, इंद्रजीत, विभीषण, सबका वध हो रहा था। एक बार रावण स्वयं युद्ध करने आ गया तो उसने बहुत से वानरों को हरा दिया, पर राम के सामने आ गया तो राम ने उसका रथ, उसके घोड़े, उसका सारथी और उसका जो क्राउन था, मुकुट, सब उड़ा दिया। और अगले दिन से मारने वाले थे तो रावण ने कहा कि अभी तुम बहुत थके हुए हो और थके हुए विरोधी को मारने में कुछ मजा नहीं है, तुम जाओ आराम करो और कल शक्ति पाके आ जाओ, कल तुम्हारा वध करूंगा मैं। और अपने ही सारे सैनिकों के सामने पूरा लज्जित होकर भाग के चला गया रावण अंदर। तो जब रावण गया तो सोचने लगा ये क्या करे, कैसे करूं, मुझे जीतना है युद्ध। तो उसने सोचा कि मैं मेरे परदादा के परदादा के परदादा है बलि महाराज और बड़े शक्तिशाली है, तो उनके पास जाऊंगा मैं। तो गए वहां पे, तो वहां पे कौन थे दरवाजे पे, वामन देव, वो रक्षा कर रहे थे। तो जाने लग गए अंदर तो वामन देव सिर हिलाए, नहीं जा सकते आप। तो वो उनको ढकेल के जाने लग गए तो वो ही फेंके गए पीछे, सोचा मैं अदृश्य होकर चला जाऊंगा अंदर। तो वो अदृश्य हो गए भौतिक दृष्टि से, पर विष्णु के दृष्टि से कौन अदृश्य हो सकता है। तब जा रहे थे वो तो वामन देव ने अपना पैर उठ पे डाल दिया और रावण चिल्लाने लग गया जोर से। पर क्या हुआ था, उसको कुचल सकते थे वामन देव, पर वामन देव का एक उद्देश्य था कि रावण का शरीर इतना दूषित था कि प्रभु श्री राम के तीरों के लिए भी वो योग्य नहीं था। इसीलिए पहले जब राम ने तीर मारे थे तो उसके रथ के, उसके मुकुट पे, उसपे धनुष और बाणों पे मारे थे, पर उसको कोई तीर नहीं मारा। तो वामन देव के चरण कमल जो कि गंगा को पवित्र बनाते हैं, उन चरण कमलों के स्पर्श से रावण का शरीर शुद्ध हो गया और अभी राम के तीरों को प्राप्त करने के लिए योग्य बन गया। छोड़ दिया उन्होंने उसको और फिर अंदर चला गया। और बलि महाराज ने कहा तुम कैसे अंदर आए, मैं इच्छा थी इसलिए आ गया, तुमको वामन ने रोका नहीं। नहीं, मुझे कौन रोक सकता है। ठीक है, वो समझ गए कि वामन तुम्हें रोक दिया था पर तुम्हें कृपा करके अंदर छोड़ दिया। तो वामन तो परम पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान है, मैं भगवान, रावण ने कहा। अच्छा ठीक है भगवान जी, अच्छा आपका क्या काम है। तो बोले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वाह कैसे भगवान है, तुम्हें मदद चाहिए मेरी। तो ठीक है बताओ क्या करना है। कि ये दो मानव और कुछ वानर आए हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं, तो आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं, आप मेरे परदादा के परदादा के परदादा है। हाँ वो तो हूँ, पर आज तक तुम्हें मेरी याद कभी नहीं आई, आज ही क्यों आई याद, आप मदद करो मुझे। अच्छा वानरों से क्या डर है तुमको, कि शक्तिशाली है, ज्यादा कुछ शक्ति नहीं है। एक वानर आया था, उसने मेरा सारा शहर जला दिया। दूसरा वानर आया था, अंगद जब गया था तो अंगद ने कहा रावण को कि तुम मेरा पैर को हिलाओ फिर युद्ध करेंगे हमसे, तो पैर भी हिला नहीं पाया था। फिर सुग्रीव गया, सुग्रीव रावण के मुंह पे थूक के आ गया। तो बोले ज्यादा शक्तिशाली नहीं है पर मैं तुम्हें मदद चाहिए। बोले ये तीन वानर तो शांति दूत के रूप में आए थे और उन्होंने इतना इतना विनाश कर दिया, युद्ध के लिए आएंगे तो क्या होगा। नहीं 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 कुछ नहीं होने वाला, मैं जीतने वाला हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, पहले हम राजनीति की बात करने, पहले आप मेरे घर में अतिथि आए तो मैं तुमको एक भेंट देना चाहता हूँ। तो अपने द्राज दरबार से वो बाहर लेके गए। बाहर एक विशाल मैदान था, ये बताया गया कि वो चार योजनों का मैदान था, चार योजन 32 मैल का मैदान था और उसमें चार योजन का एक बड़ा पर्वत था और वो 9 योजन ऊंचा था, मतलब बहुत बहुत ऊंचा। और वो देखा रावण ने पूरा सोने से बनाया है और उस पे मणि लगे हुए हैं। तो तुम मेरे परदा, तुम मेरे पोते हो तो इसीलिए मैं तुम्हें ये भेंट देना चाहता हूं। ये पूरा पर्वत, रावण इतना खुश हो गया, बोले सीता सब कुछ भुलंका भूल जाओ, यहीं पे रह गए। हाँ ये पूरा पर्वत देना चाहता हूं पर एक ही शर्त है, तुम इस पर्वत को उठा के लेके जाओ। तो वो पर्वत को उठाने लगे तो उठा ही नहीं पा रहे थे, हिला भी नहीं पा रहे थे। तो बलिवारा देख के हंस रहे थे, देखो टिक्कर से पर्वत कैसे लग रहा है ये। तो देखा कि ये कान में जो अंगूठी पहनते हैं उसमें जो मणि होता है उसकी ऐसे लग रहा है ये। हाँ तुम जानते हैं क्या ये? नहीं क्या ये? ये हिरण्यकशिपु के कान का मणि था और उस हिरण्यकशिपु को रामचंद्र भगवान ने पिछले अवतार में सिर्फ अपने नाखून से मार डाला। और हे रावण, तुम ही पिछले जन्म में वो हिरण्यकशिपु थे और तुम्हारा वध बड़ा आसानी से हिरण्यकशिपु ने कर दिया है। इस जन्म में तुम्हारी शक्ति पिछले जन्म से बहुत कम है, तुम क्या राम से युद्ध करोगे। फिर भी देखकर भी पश्यन अपि न पश्यति, रावण नहीं मान पाया, नहीं फिर भी मैं जीतूंगा। श्री रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो यही नास्तिक वाले लोगों का भाव होता है, वो देखते हैं कि कैसे सब सबकी मृत्यु होने वाली है। द्रौपदी जी को एक बार पूछा गया कि वास्तव में भारत में डेथ रेट इतना ज्यादा क्यों है, भारत में मृत्यु की संख्या, मृत्यु की मात्रा इतनी ज्यादा क्यों है। द्रौपदी जी बोले मृत्यु की मात्रा सब जगह समान है, 100% सब जगह लोगों की मृत्यु होती है। तो असुरी प्रवृत्ति का मतलब क्या है, जो देखते हैं फिर भी नहीं देखते और भगवान के विरुद्ध जाते रहते हैं। तो अभी असुर का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको दो सिंह है, दांत बाहर आ रहे हैं, वैसे भी हो सकता है, पर असुर का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति भगवान के आदेशों के विलाप जाता है उसको असुर कहते हैं। विष्णु भक्त स्मृतो देवो असुर तद विपर्य, जो भगवान के आदेशों के खिलाफ जाता है वो असुर है। तो इसका मतलब क्या है, तो जयद्वीप महाराज एक लेख में लिखते हैं, हु इज अ डीमन, असुर कौन है। बोलते हैं कि वास्तव में आपका लोकल जो राजनेता है वो भी असुर हो सकता है, आपका जो पोस्टमैन है वो भी असुर हो सकता है, आपका जो पड़ोसी है वो भी असुर हो सकता है और आप भी असुर हो सकते हैं। क्यों? अगर भगवान के आदेश का पालन नहीं करे तो असुर है। तो प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया, प्रभुपाद जी हम नहीं कह सकते कि लोग असुर है, सत्य है वो कहना पड़ेगा, भगवान कह रहे हैं ये। तो फिर भक्त ने पूछा क्या असुर भक्त बन सकते हैं। हाँ प्रभुपाद जी बोले कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो असुर अगर भगवान का नाम लेते हैं तो वो भी भक्त बन सकते हैं। तो रावण को भी वो मौका था पर रावण ने कभी वो स्वीकार नहीं किया। जब वो जब वानरों ने सब सेतु बनाया था तब क्या हुआ, सारे लंका के राक्षस आश्चर्य के, तुम कैसे पर्वत बनाया उन्होंने? तो फिर मंदोदरी भी कहने लगे रावण से, देखो उन्हें सागर में पत्थर तैरा रहे हो, तुम क्यों युद्ध करना चाहते हो? रावण ने कहा तो क्या बड़ी बात है उसमें, मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा दिखाओ मुझे। तो रावण लिखे गए और फिर उन्हें पत्थर डाला और वो पत्थर तैरने लग गया, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मंदोदरी बोले बहुत अच्छा, आप भी बहुत शक्तिशाली हो। और फिर बाद में उनको थोड़ा मस्का लगाया, बाद में पूछा जब वो अपने कमरे में चले गए थे कि तुमने वो पत्थर वो कैसे तैराया? तो रावण ने कहा मैंने वो पत्थर से कहा तुझे राम कसम डूबना मत। तो रावण भी जानता था राम की शक्ति क्या है, पर फिर भी राम के खिलाफ जा रहा था। क्यों? कामई सही सही रित ज्ञान, हाँ काम वासना के कारण उसकी बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो गई थी, जानता था फिर भी नहीं जानता था। दुर्भाग्यवश से कलयुग में ऐसे लोग हैं कि वो असुरी प्रवृत्ति के होते हैं, वो जानते हुए भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करना चाहते हैं, कीर्तन न केवल करता नहीं करना चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। इंद्रदुम्न महाराज बताते हैं कथा की, जब वो कीर्तन पे जा रहे थे फ्रांस में तो उन्होंने एक स्त्री को देखा कि वो उन्होंने जब भक्तों को देखा आनंद से कीर्तन करते हुए, तो उसने अपने कान बंद कर लिए, पूरे कान में हाथ डाल, एक ध्वनि नहीं सुन रही थी। तो भक्त सोचे कितने दुर्भाग्यशाली है ये। और फिर वो वापस आ गए और उन्हें प्रभुपाद जी को बताया कि प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे हुआ, कितनी दुर्भाग्यशाली स्त्री है। तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि तुम तो शक्तिशाली थे, तुमने उसका हाथ खो कान खोलकर उसको सुना दिया हरे कृष्ण महामंत्र। तो वास्तव में ये एडामेंस है, उद्दंडता है कि कितना भी मौका मिले भगवान दे, फिर भी जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो सुधरते नहीं है। पर अगर किसी न किसी तरह से हम उनको भगवान की सेवा करने का मौका देते हैं तो उनमें भी परिवर्तन हो सकता है। तो रावण ये सीखा था कि कैसे काम के कारण वो बिल्कुल उद्दंड बन गया, किसी को सुनने को तैयार नहीं था। तो जब युद्ध शुरू हो गया तो वानर पहाड़ और झाड़ी लेकर आक्रमण कर रहे थे और बड़ा घमासान युद्ध चल रहा था। और जब राम लक्ष्मण को लक्ष्मण बेहोश हो गए तो पर्वत लेके आया हनुमान और फिर उनको पुनर्जीवित कर दिया। और जब अंत में अभी कुछ भी काम नहीं चल रहा था तब क्या हुआ, अर्जुन का एक भाई था, सॉरी अर्जुन का रावण का, उसका नाम था महीरावण। तो उसने कहा कि मैं उसके पास जाके मदद मांगता हूँ। तो महीरावण को बुलाया उसने और महीरावण को बताया कि ये जो दो वानव है और कुछ वानर है वो बहुत विध्वंस कर रहे हैं। तो महीरावण ने कहा कि अभी 4 बजे है, रात को 12 बजे मैं इन दोनों को काली को बलि दे दूंगा और तुम जीत जाओगे, तुम चिंता मत करो। तो रावण ने कहा वाह भाई हो तो ऐसा, वो भूषण कुछ काम का नहीं था, तुम असली भाई हो। तो फिर महीरावण चला गया और महीरावण कहने लग गया, अब उसकी एक नाग कन्या उसकी पत्नी थी, ने कहा कि मैंने अभी तक 999 क्षत्रियों को कली को बरी दिया है, मुझे एक और क्षत्रिय चाहिए था, पर दो मिल गए, राम और लक्ष्मण दोनों मिल गए। तो राम और लक्ष्मण, अभी वो नाग थी तो नाग जो होते विष्णु के भक्त होते, उसने कहा ये तो भगवान है। और नारद मुनि ने इसे भविष्यवाणी की थी कि जब अगर एक वानर आके लंका में विध्वंस करेगा तो रावण का वध होगा, और कोई वानर हमारे महीपुरी में आ जाएगा तो वही आपका भी विनाश हो जाएगा, और उसके पक्ष में बहुत वानर है, कोई आ सकता है यहाँ पे, आप क्यों उनके फंदे में पड़ रहे हो, रावण को जाने दो और राम को छोड़ दो, राम को आप युद्ध मत करो। तो महीरावण क्रोधित हो गया, मेरे माता पिता ने बताया था कि अपने ही कुल में विवाह करना चाहिए, तुम एक साग कन्या हो और अभी साप से जहर डाल रही हो मुझ में, चला गया वहां से वो। और फिर उसने षड्यंत्र बनाया, तो इधर विभीषण था, विभीषण को पता चल गया कि अभी महीरावण को बुलाने वाले हैं। तो महीरावण बड़ा जादू टोना करता था, इसीलिए उन्होंने एक बड़ा महल बनाया, एक फोर्ट बनाया, दुर्ग बनाया, और दुर्ग किससे बनाया, दुर्ग हनुमान की पूछ से बनाया, हनुमान की पूछ से ऊंचा विशाल दुर्ग बना दिया और उसमें राम और लक्ष्मण को रख दिया। और वो दुर्ग में प्रवेश करने का, गढ़ में प्रवेश करने एक ही मार्ग था, क्या, वो हनुमान के कान से अंदर जाना, फिर गले से नीचे, गले में एक नर होता है, एक नस होती है, उससे अंदर जाके पूछ में जाना और पूंछ के एंड में एक छोटा छेद था और छेद से अंदर उस में प्रवेश करना, तो कोई भी जा नहीं सकता था। तो सब वानर बैठे थे, फिर रात हो गई, तो राम लक्ष्मण सो गए और विभीषण और हनुमान जगे थे। हमें महिरावण कभी भी आ सकता है। जब वो जगे थे तो विभीषण वहां पे आ गए। विभीषण, मैं अंदर जाकर जरा देखता हूँ क्या चल रहा है, और अगर मैं अंदर गया हूं तो कोई भी आए उसको अंदर में जाने जा, भले रावण भी मेरे रूप में आ सकता है, महिरावण भी मेरे रूप में आ सकता है, तो इसलिए सावध रहो। तो अंदर चले गए और काफी समय तक इंतजार कर रहे थे, अंदर से बाहर नहीं आए। और थोड़ी देर के बाद विभीषण वहां पे वापस आ गए। अरे तुम तो अंदर, तुम यहां पे कैसे आ गए? तो मैं तो अंदर गया ही नहीं था, क्या मतलब? और तुरंत विभीषण अंदर दौड़ते हुए गए, अंदर गए तो राम लक्ष्मण नहीं थे वहां पे। क्या हो गया? तो वास्तव में हनुमान के पूछ में वास्तव में एंटेना था। तो अगर वहां से कोई जाता था तो उसके हिलने से भी उस स्पर्श उनको हो जाता था। तो ये महिरावन इतना बड़ा योगी था कि जब से वो अंदर चला गया उसने अपना सांस बंद कर लिया और बिना किसी आवाज के निकल गया बाहर। और फिर तुरंत सब वानर में हाहाकार मच गया। फिर तुरंत हनुमान ने पूछा कि राम लक्ष्मण कहाँ हो गए अभी? तो ये सब महिरावन की चाल है, उसने कहा महिरावन मेरे रूप में आया था और लेके चला गया, तो वो महीपुरी में रहता है, तो मैं तुरंत जाके उसको कुचल दूंगा। बोले इतना आसान नहीं है ये, उसको मारना है तो उसको मार डालोगे तो पुनः जीवित हो जाएगा वो। उसके मारने के लिए वास्तव में उसका जो प्राण है वो तीन जगहों पर है। एक जगह है उसका हृदय, दूसरा जगह है एक लंबे दूसरे पहाड़ में 10 बत्तियां जल रही है, उन 10 बत्तियों में, और तीसरे जगह पे एक मौल्यवान मणि है उसमें। ठीक है, जो भी करना है मैं करूंगा। और सीधा हनुमान महीपुरी की ओर चले गए। तो महीपुरी एक सागर में एक विशाल कमल के अंदर था। जब वो कमल के अंदर जा रहे थे तो कमल खुल ही नहीं रहा था, तो कमल को खोलने के लिए एक पासवर्ड था, और विभीषण ने पासवर्ड बताया था पर हनुमान भूल गए पासवर्ड। तो फिर तभी तुरंत ने वायु अपने पिता को बुलाया, तो वो बोले कि हे वायु क्या करूं मैं, वो भूल गया पासवर्ड अभी। तो बोले कोई चिंता मत करो, वो बोले कि ये पासवर्ड प्रेशर से काम करता है, तो मैं प्रेशर बदल दूंगा और खुल जाएगा। तो खुल गया और वो अंदर चले गए। तो जब वो अंदर चले गए तो वहां पे एक विशाल गढ़ था और उसके ऊपर 2000 लाख सोल्जर्स और उसका संरक्षण कर रहे थे। तो हनुमान सोच रहे इसका सबका विनाश कैसे करें। तभी एक आवाज, हनुमान मुझे इस्तेमाल करो, मुझे इस्तेमाल करो। देखा क्या है, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो वो एक पेड़ बोल रहा था, बोले मैं वास्तव में एक देवता हूँ और मुझे नारद मुनि का शाप मिलके मैं पेड़ बन गया था, मतलब पेड़ बना तो मैं निकम्मा हो जाना, भगवान की सेवा कैसे करूँगा। नहीं, बोले कि हनुमान आएगा और तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। तो फिर हनुमान ने वो पेड़ उठा लिया और एक फटका मारा, पूरा गढ़ नीचे गिर गया और सब सैनिकों का वध हो गया। और आगे गए हनुमान और दूसरा एक गढ़ था, तो उसको अपने पैर से मारा, गढ़ टूट गया और सब सैनिक नीचे गिर के मारे। तीसरा गढ़ था, चौथा गढ़ था, आखिरी गढ़ था वो मेटल का गढ़ था। तो हनुमान इतने क्रोध हो गए, तब तक आपने आंखों से दृष्टिपात किया और वो सारा जो मेटल था मेल्ट हो गया वो, और वो अंदर चले गए। अंदर चले गए तो वहां पे है एक आखिरी गढ़ था, उसको तोड़ना नामुमकिन था, और एक दरवाजा था, और दरवाजे में ये बड़ा साइंटिस्ट था महिरावण, तो उसने एक महिरावण हेट मीटर रखा था। मतलब वो जो मीटर था, वो अगर कोई व्यक्ति अंदर जा रहा है तो अगर महिरावण से प्रेम करता है तो वो इस ओर मुड़ेगा, और जितना प्रेम करता है उतना इस ओर मुड़ेगा, और कोई और महिरावण से वो नफरत करता है तो उस ओर मुड़ेगा, और जितना नफरत करता है उतना मुड़ेगा। तो अभी उसके पास तो जा नहीं सकता था हनुमान, तो सोचे थे क्या करे। तो ये महिरावण की एक बहन थी दुर्तंडी, और ब्राह्मण ने बताया था कि महिरावन आपके बाद इस दुर्दंडी का जो पुत्र है महीवेग वो राजा बनेगा। तो महिरावन हमेशा राजा बनाना चाहता था, तो उसने क्या कर दिया, दुर्दंडी और उसके पुत्र को जेल में डाल दिया। जैसे कंस ने डाल दिया था कृष्ण और देवकी और वसुदेव को, तो दुर्दंडी को कभी बाहर ही निकालना था वो। पर दुर्दंडी का एक गुण था कि वो बहुत पवित्र थी, इसलिए जब वो यज्ञ करती थी तो वो यज्ञ जरूर यशस्वी होता था। और अभी वो यज्ञ करना चाहता था राम और लक्ष्मण को बलि चढ़ाने के लिए, तो इसलिए उसने दुर्दंडी के सिर्फ पैर खोल दिए और हाथ बंधे हुए थे, और वो जाके जल लाती थी और जब जल निकालना था तब हाथ खोल दिए जाते थे और जल लेके आती थी। तो जब दुर्दंडी ने हनुमान को देखा तो उन्होंने इशारों से बात की और समझ गया कि जो दुर्दंडी कह रहे थे कैसे महिरावण इतना क्रूर है, अपने बहन को अपने भांजे को इतना अत्याचार कर रहा है। तो हनुमान समझ गए, तो अदृश्य रूप में हनुमान से बात करने लग गए कि मैं राम का सेवक हूँ, राम लक्ष्मण जानते तुम कहाँ है, मुझे भी जानते हो, तो मुझे अंदर ले चलो। नहीं कैसे आ सकते, ये जो हेट मीटर है, नफरत का मीटर है, नहीं तुम जो मटका है उसके अंदर एक पत्ते में मुझे डाल दो। तो पत्ते में मुझे डाल दो बोला, तो फिर वो डाल दिया। और जैसे ही वो करीब आ गई तो जब भी वो दुर्दंडी आती तो दुर्दंडी भी उस महिलाओं से नफरत करती थी, तो इसीलिए जो मीटर था 30 तक जाता था, पर जब अभी चले गई तो 100 के आगे चला गया। तो गांव से सैनिक थे बोले लगे, अरे तुम्हारी नफरत इतनी कैसे बढ़ गई अचानक, तुम्हारे साथ जरूर कोई ना कोई होगा। तो बोले नहीं कोई नहीं है मेरे साथ, देखो। फिर पानी में देखा, मटके में देखा, पानी में कुछ नहीं था। फिर देखा ठीक है, तो आगे चले गए। तो जब वो हनुमान उस मशीन के बाजू से चले गए, फाड़ मशीन टूट गया। तो फिर जरूर कोई तो भी अंदर है, कौन है यहाँ पे। और वो अभी मशीन के पास चले गए तो हनुमान तुरंत निकले, मैं हूँ यहाँ पे, और सब असुरों का वध करने लग गए। तो महिरावन देखे, महिरावन वहां पे आ गए। तो जैसे ही हनुमान ने देखा महिरावन को, महिरावन पर रथ पे आ गए थे, हनुमान पूरे शक्ति से उस महिरावन के रथ पे कूद गए और वो रथ सारथी और महिरावन सबको कुचल दिया। जय श्री राम चिल्ला, वो चिल्लाने लग गए और महिरावन हंसते हुए वापस उठ गए। तो वाह जोर से मारा, गिर गया उसका सिर और शरीर अलग हो गया। जय श्री राम बोले वो, तो फिर वापस उठ गया वो। तो हनुमान समझ गए जय श्री राम से उठ रहे गए वो, राम नाम की शक्ति है। वापस उसको मारने गए तो फिर उनको याद आया कि इसको ऐसे मार नहीं सकते हैं। तो फिर उनको सोचा कैसे मारना है, तो वो महिरावन भाग गया। और तभी दुर्दंडी सीधा राम के पास लेके चले गए उनको। अभी राम लीला कर रहे थे, उन्होंने बताया कि मैं इसका इतना प्रयास कर रहा हूँ इसको मारने को, मैं मार नहीं पा रहा हूँ। तो राम बोले तुम चिंता मत करो, हम एक योजना बनाते हैं। तो वास्तव में ये महिरावन को मारने का कंडीशन क्या था कि एक ही समय में वो 10 के 10 दिए बुझाने थे, एक उसी समय वो जो हीरा था उसको कुचल के मिट्टी बनाना था, और उसी समय ये महिरावन के सीने में तीर मारना था। तो लक्ष्मण छूट गए थे, हनुमान ने उनको छुड़ा दिया था। तो राम ने कहा लक्ष्मण तुम दुर्दंडी से पूछो वो हीरा कहाँ है, और तुम हीरा के पास रहो, और राम हनुमान तुम वो जो दिए वहां पे चले जाओ। तो हनुमान तुरंत उड़ते हुए चले गए, वायु उनके पीछे आ रहा था, बहुत दूर पहाड़ों में हिमालय में थे। तो 12 बजने को सिर्फ 5 मिनट थे, 12 बजे यज्ञ होने वाला था वो। और तो तब वो पहुंच गए और वो सब वहां पे सांप थे, वो 5 दियों के बाजू में सांप थे। तो हनुमान ने जोर से सांपों को मारा, सब सांपों को बाजू को कर दिया, और फिर वो सब दियों को बुझाने लग गए। तो दूसरे दियों को बुझा दिया, तुरंत पहला दिया चालू हो जाता था। तो हनुमान खुश हो गए, इतना जोर से फूंकिया कि वो जो गुफा थी वो कांपने लग गई, सब दिए बुझ गए, पर तुरंत वो दिए चालू हो गए वापस। तो अभी वो सोचने लगे क्या करें, तभी उन्हें वायु को याद किया। तो वायु आ गए, क्या समस्या है अभी, ये दिए बुझ नहीं रहे, तुम जानते हैं तुम्हारे पिता कौन है, मेरे कारण ही सब दिए जलते हैं। तो वायु ने क्या किया, सब दिए को बंद कर, वहां के वायु प्रवाह बंद कर दिया। और फिर जब हनुमान ने फूक किया तो वो बुझ गए और कुछ चालू नहीं है। और उसी समय बराबर हनुमान लक्ष्मण ने वो जो हीरा था तोड़ के कुचल कर दिया, और उसी समय राम को वो महिरावन क्या करने वाला था, बलि चढ़ाने वाला था। तो राम को ऐसा सजा दिया जाता, उसने कहा अभी तुम काली के सामने प्रणाम करो, और प्रणाम करोगे फिर तुमको बलि चढ़ाया जाएगा। तो प्रभु श्री राम नाटक करने लगे, वो कहने लगे, लीला करने लगे, वो बोले कि वास्तव में तुम मुझे इतना जबरदस्ती लेके आ गए, मुझे सदमा पहुंच गया, मैं भूल गया हूँ प्रणाम कैसे करना, तुम दिखाओ ना मुझे प्रणाम कैसे करना। तो वो जैसे ही प्रणाम करने के लिए झुक गए तो ऋषि ने तीर उठा लिया, ताड़ के सीने में मार डाला। तो तीनों एक ही समय में हुआ और वो महिरावन का वध हो गया। और जैसे ही महिरावन का वध हो गया तुरंत सारी महीपुरी गिरने लग गई, सारे महल गिरने लग गए, वहां पे भूकंप होने लग गया, तूफान आने लग गया। और जब हनुमान ने देखा, तुरंत हनुमान को ब्रह्मा जी ने शक्ति दी थी कि वो अगर किसी भी जगह की याद करेंगे तुरंत पहुंच जाएंगे वहां, पर अब तक वो शक्ति की उनकी स्मृति नहीं आई थी, तो अभी उनको स्मृति आ गई और तुरंत हिमालय से उन्होंने की मैं महीपुरी में पहुंचना है। तो महीपुरी में पहुंच गए और महीपुरी कुशल के नीचे गिर रही थी, तभी क्या किया उन्होंने, तभी उन्होंने राम और लक्ष्मण कहा तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ और चलो हम जाते हैं। और राम और लक्ष्मण बैठ गए और वो उड़ते हुए महीपुरी से वापस लंका में आ गए युद्ध करने के लिए। श्री रामचंद्र भगवान की। तो ये जो है असुर है वो बहुत जादू टोना इस्तेमाल करते हैं। तो महिरावन अकेला कोई भी उस महिरावन को नहीं मार सकता था, उसको मारने के लिए सबको सहयोग से कार्य करना था, राम लक्ष्मण और हनुमान। तो ये कली भी है, कली भी बहुत कलयुग चल रहा है अभी, वो कली भी बहुत चालाक है, वो भी जादू टोना करके सब और माया का जाल फैला रहा है। तो अगर हमें कलयुग से बचना है और कृष्ण भावना में रहना है, कृष्ण भावना का प्रचार करना है, तो हमें भी सब भक्तों के सहयोग के साथ कार्य करना है। प्रभु श्री राम वास्तव में उनकी सिद्धि शक्ति है कि वो किसी को सबको एक पल में मार सकते हैं, पर वो लीला से दिखाते हैं कैसे वो भी अपने भक्तों के सहयोग लेते हैं। तो हम जब भक्ति कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी कहते थे यू लव फॉर मी कैन बी शोन बाय हाउ यू कोऑपरेट, कि आप सहयोग से सेवा करोगे तो उससे दिखाई देता है कि आप कितना मुझे प्रेम करते हो। तो प्रभु श्री राम सिखा रहे हैं कि जो मायावी कली जैसे असुर है तो उनको अगर हराना है तो फिर हम सबको साथ में रहकर कार्य करना है। तो हम भक्तों के संग में आते रहते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो उससे जो शक्ति निर्माण होती है संकीर्तन की शक्ति, उससे हम माया पे जीत सकते हैं और कृष्ण भावना का प्रचार कर सकते हैं, खुद भी भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो फिर बाद में रावण का वध किया उन्होंने और रावण के बाद पुनः वे उसी पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए, फिर उनका राज्याभिषेक हुआ और फिर ऐसे ही अनेक लीलाएं चलती रही। तो ये प्रभु श्री राम की लीलाएं है, बहुत मधुर है। और वही जो राम लक्ष्मण थे वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद रूप के रूप में आए हैं और उन्होंने हमको हरिनाम संकीर्तन सिखाया है। तो यही जो प्राप्ति वीर रस में युद्ध करके वानरों ने की थी वो हम संकीर्तन रस में कीर्तन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें कुछ युद्ध नहीं करना है, वास्तव में युद्ध हमारे हृदय में जो अनर्थ है उनके खिलाफ करना है। तो तभी तीर इस्तेमाल कर रहे थे, तभी हमारे पास हरिनाम की तीर है और हमारे अंदर भी अनर्थ है जो असुरों के समान है, तो उनको हमको हरिनाम के तीर से मारना है। तो एक हरे कृष्ण महामंत्र में 16 तीर है जिससे हम अमन रूपी असुर को मार सकते हैं। तो वास्तव में एक महामंत्र में 16 तीर है, पर हम 16 माला में एक भी तीर नहीं मारते मन को। क्यों? जब में ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कोई शत्रु को मार रहा है तो शत्रु क्या करता है, इधर उधर कूदता है ताकि उसे तीर न लगे। तो द माइंड ट्राइज टू डॉज द होली नेम, मन हमेशा हरिनाम को सुनने का अपना सुनता नहीं है। तो एक बार तुकाराम महाराज को पूछा गया कि हम एक शिष्य ने पूछा कि एक भक्त ने पूछा कि महाराज जब हम जप कर रहे होते हैं तो मन बहुत भागता है। तो तुकाराम महाराज ने कहा मन को भागने दो, तुम उसके पीछे क्यों भागते हो। तो वास्तव में अगर एकाग्र चित्त से हरिनाम का आश्रय ग्रहण करते हैं तो हम तेज से शुद्ध होकर भगत प्राप्ति को कर सकते हैं, भगत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये आखिरी एक प्रार्थना के साथ हम अंत करेंगे। श्री राघवम दशरथात्मजम अप्रमेयम्, सीतापतिम रघुकुलन्मय रत्न दीपम्, अजानुबाहुम अरविंद दलायताक्षम्, रामम निशाचर विशा रामम निशाचर विनाशकरम नमामि। जो राघव रघुवंश के दशरथ के पुत्र है, अप्रमेय, उनकी शक्ति को गणना नहीं कर सकते। वो सीतापति है और रघुकुल में वो एक रत्न के रूप में उज्ज्वलित होकर प्रकट हुए हैं। अजान बाहु उनका दिव्य शरीर है, जो उनके बाहु है घुटने से लंबी है, अरविंद दलायताक्ष, उनकी आंखें बहुत सुंदर है। और ये राम कौन है? निशाचर। रात को कौन चलते हैं? असुर लोग। निशाचर विनाश करम नमामि। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। तो थोड़ा है, अभी एक छोटी नाटिका होगी, तो कृपया आप थोड़ा सब्र कीजिए, यहाँ पे सेटअप कर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।